जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने शेष जीवन को और बेहतर ढंग से कैसे जिया जा सके, इस बात पर विचार करने एक साथ बैठे हुए हैं। हम सभी के मन में ये विचार कई बार आता है कि हम अपने जीवन को जिस तरह जी रहे हैं, क्या उससे भी बेहतर ढंग से जी सकते हैं। और जब जब भी ऐसा विचार आता है तो अंतरात्मा यही कहती है कि हाँ जी सकते हैं, लेकिन फिर बुद्धि बीच में आकर हमें ढेर सारी बातों से अवगत कराती है, समझाती है कि बेहतर ढंग से जीवन अब नहीं जिया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, हमारे चारों तरफ वातावरण ही ऐसा है कि हम कितने भी सीधा सच्चा और अच्छा जीवन जीना चाहें, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। संसार में सफल होने के लिए जरूरी है कि जरा बेईमानी से, छल कपट से जैसे तैसे बने अपने जीवन में धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, ये सब हासिल करनी चाहिए। क्या रखा है इन बातों में कि कोई सरल और सहज होकर के अच्छा जीवन जिए, ऐसा बुद्धि हमें समझा लेती है और हम भी अपनी बुद्धि के समझाए समझ भी जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज को हम सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं, और एक यही सबसे बड़ा हमारे जीवन में कारण बनता है जिससे कि हम चाहते हुए भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते हैं। हम इसलिए यहां बैठे हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज को ठीक सुन सकें और पहचान सकें अपने जीवन की वास्तविकता को, और उसको हासिल करने के लिए कुछ बातों पर विचार कर सकें और उनमें से जितना बन सके अपने आचरण में उन्हें लाने के लिए संकल्पित हो सकें। हम विचार कर लें कि हमारे अपने जीवन को हम बेहतर बनाने के लिए आज वर्तमान में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम जीवन को बेहतर कब समझते हैं, जबकि हमारे पास सुख सुविधा के भौतिक साधन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अब बेहतर हो गया है। जिसके पास जितने ज्यादा सुख सुविधा के साधन हैं, उसका जीवन उतना बढ़िया है, और जिसके पास इन सब का अभाव है, उसका जीवन तो अभावग्रस्त है और वो अच्छा नहीं है। और इस सोच के कारण, इस भोगवादी दृष्टिकोण के कारण, फिर हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें एक के बाद एक आना शुरू होती हैं, और वे चीजें फिर हमें हमारे जीवन को दुखदायी भी क्यों ना हो, हम उन्हें ही अपनाते चले जाते हैं। बचपन से हम इस एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि संसार में बेहतर जीवन वही है जिसमें सुख सुविधा के बहुत साधन हो, इसलिए सुख सुविधा के साधन पाने के लिए तुम दौड़ो। वो दौड़ अंधी है या अंतहीन है, इससे परिचय नहीं कराते हैं, बस एक दौड़ है और उसमें तुम शामिल हो जाओ, और धीरे धीरे करके बच्चों के भीतर इस दौड़ में शामिल होने पर महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना, अपनी योग्यता से अधिक आकांक्षाएं करना, वो अपने लिए ही घातक है। यह बात सहसा समझ में नहीं आती जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट धोखे से मोबाइल पर गलत सुन लेने पर, और एक बेटी ने अपने प्राण दे दिए, एक नहीं ऐसी 5 एक साथ खबरें सुनने में आई, तब यही मालूम पड़ता है कि उसकी गलती नहीं है, गलती उसके परिवारजनों की है। उसे अपने प्राण देने के लिए बाध्य करने वाले कौन है? उसके अपने परिवारजन, जिन्होंने उसे बचपन से महत्वाकांक्षी बनाया और उससे सैकड़ों अपेक्षाएं रखी, और जब उसने देखा कि मैं अपनी और अपने परिवारजनों की इच्छा की पूर्ति ही नहीं कर पाऊं, तो फिर ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब है, और निराशा उसके जीवन में आ गई। हम अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, और वे बच्चे भी अपने आप से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि वो उनकी क्षमता से अधिक हो जाती है, और जब उसमें असफलता मिलती है तब वे निराशा की तरफ चले जाते हैं, और जीवन बेहतर न बनके जीवन नष्ट हो जाता है इस एक महत्वाकांक्षा या प्रतिस्पर्धा के सोच के कारण। हमें इसके दबाव को कम करना चाहिए अपने और दूसरे के जीवन में भी। यह जो भोगवादी दृष्टिकोण हमें प्रतिस्पर्धा में डालता है और बहुत अधिक एम्बिशियस बनाता है, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बनाता है, वह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का उपाय नहीं है, वो तो हमारे जीवन को नष्ट करने का उपाय है। हम अपने लिए जो प्राप्त है उसे नहीं देखते हैं, हम हमेशा दूसरे को जो प्राप्त है उससे कंपेयर करके अपने आप को देखते हैं। यही प्रवृत्ति है प्रतिस्पर्धा की, जो कि आज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो क्या हम अपने जीवन का विकास ना करें, प्रगति ना करें? क्या हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? फिर आप ही तो बच्चों को कहते हैं कि बच्चों पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, फिर आपकी ये बात तो ठीक नहीं मानी जाएगी? ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा? नहीं, हमने शायद उसको ठीक से समझा नहीं। हमें अपनी प्रगति करने के लिए दूसरे को डिफीट करना पड़े? क्या हमारे प्रगति का यही उद्देश्य है? मुझे एक दूसरे से अधिक आगे बढ़ना है, यह क्यों सोचे हम? मुझे आगे बढ़ना है, क्या यह विचार पर्याप्त नहीं है? मेरे ख्याल से तो यह विचार पर्याप्त है। मेरी लाइन बड़ी हो जाए, यह प्रयत्न मैं करूं, या कि दूसरे की लाइन को छोटी करके मैं अपनी बड़ी करूं, यह प्रयत्न मैं करूं, दो में से कौन सा प्रयत्न ठीक है? आज वर्तमान में तो हम अपनी लाइन बड़ी करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि दूसरे की छोटी करके अपनी बड़ी हो जावे इसकी जुगत में रहते हैं। ये कहलाती प्रतिस्पर्धा। उनके बेटे के 90% आए हैं और तुम देखो तुम्हारे 75 आए हैं। यह कंपेयर जो हम करते हैं वह जागृत करती है प्रतिस्पर्धा की भावना। और अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ ये कहें कि पिछले बार तुम्हारे 75 आए थे, अब तो तुम थोड़ी मेहनत और करोगे तो तुम्हारे 80 और 90 भी आएंगे, किसी और के आए हैं इसलिए तुम्हारे आना चाहिए, ये नहीं, तुम्हें चूंकि एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपनी क्षमताओं अपनी योग्यताओं का और अधिक इजाफा करना चाहिए, इस दृष्टि से अगर हम उन्हें प्रेरित करते हैं तो वह प्रतिस्पर्धा, टू कॉम्पीट योर सेल्फ नॉट टू अदर्स। अगर हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपने आप से करें, किसी और से क्यों करें? मुझे अपने जीवन में जो मैंने जिया था कल उससे भी बेहतर जीवन जीना है, यह भी तो प्रतिस्पर्धा ही है अपने आप से, यह भी तो अपने आप से अपेक्षा है। लेकिन अपेक्षा के साथ ध्यान रखें कि मैं अपनी योग्यता बढ़ाकर ही अपनी अपेक्षाओं को पूरा कर पाऊंगा। अयोग्य व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को तो कर सकता है पर उनकी पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए जरूरी है कि मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊं। यह बात तो बिल्कुल समझ में आने वाली है, लेकिन आज हम लोग जिस तरह प्रतिस्पर्धा में कॉम्पिटिशन में अपना जीवन जी रहे हैं, उससे हमने क्या पाया है? न जीवन को बेहतर बना पाए हैं, न कोई सुख शांति पाई है, उल्टे हमने दुख ही पाया है। हमारे घर में हमें जितनी चीजों की आवश्यकता है वे पर्याप्त हैं, लेकिन हमें संतोष नहीं है। हम तो दूसरे के घर में जब से और चीजें देख करके आए हैं भौतिक सुख सुविधा की, हमारा मन कहता है कि हम भी उनको प्राप्त कर ले, जबकि हमारा काम जितनी हमारे पास है उतने में बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अब चूंकि दूसरे के पास हमसे भी ज्यादा भौतिक सुख सुविधा के साधन है, तो अब प्रतिस्पर्धा की भावना मन में आती है कि मेरे पास भी वे सब होना चाहिए, और वे सब तब होंगे जबकि मैं भी अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा तब होंगे। ऐसा नहीं, मैं अयोग्य रहकर भी उन्हें प्राप्त कर सकता हूं, इसके लिए प्रयत्न करूं मैं, और वो प्रयत्न यही है कि मैं बेईमानी करूं, छल कपट करूं और चार पैसे किसी भी किसी तरह से भी ला करके और उन सब चीजों को अपने घर में रख लूं। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, ये ध्यान रखना। हम शिकायत जरूर करते हैं बच्चों की, पर बचपन से हम स्वयं प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं बच्चों को, और फिर बाद में उन्हें भौतिक सुख सुविधा में इतना मशगूल कर देते हैं कि उन्हें एक भी चीज का अभाव बहुत तकलीफ देता है, और वे अपने माता पिता से भी अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी परवरिश बहुत बहुत अधिक लग्जूरियस होकर के करें। अपने माता पिता से वे सुख सुविधा के बहुत सारे साधनों की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आपने स्वयं अपनी लाइफ को लग्जूरियस जिया है तो उन्हें भी वो सब चाहिए। हम अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि हम पैसे वाले हैं। महंगे स्कूल में पढ़ाने से विद्या आती है ऐसा नहीं है, महंगे स्कूल में पढ़ाने से और उनके भीतर फिर हमेशा अपने आप को बहुत सुपीरियर मान लेने की एक व्यर्थ धारणा उनके भीतर हम बना देते हैं। इतना बड़ा अपराध हम करते हैं, अपराध शब्द कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना, लग सकता है आपको बुरा कि हमने तो मेऊ में भेजा, अजमेर में, जिसमें कि यकी एक और पाथ वे दिल्ली में, छोटे बच्चों का स्कूल जिसमें चौथी क्लास के बच्चे की 1,25,000 सिक्स मंथ की फीस लगती है, सिक्स मंथ की। उस स्कूल में मैंने पढ़ने भेजा अपने बेटे को, मैं पैसे वाला हूं। अब वहां भेजने के बाद वो पढ़ेगा तो उतने ही, जितना उसका छेपसम होगा उतने ही पढ़ेगा ना, या कि गुरुजी उसके लिए अपना ज्ञान उठा करके डाल देंगे अंदर, क्योंकि आपने 1,25,000 रुपए दिया है 6 महीने में। नहीं, लेकिन वो सिर्फ क्या सीखेगा, कॉम्पिटिशन सीखेगा। अब वो छोटे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हिराकत की नजर से देखेगा और अपने को बहुत सुपीरियर मान लेगा। और जब कोई व्यक्ति अपने को बहुत सुपीरियर मान लेता है, तब फिर वो उन सब चीजों की अपेक्षा रखता है जो एक सुपीरियर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यहां से हम उसके भीतर एक भ्रम उत्पन्न करते हैं और उसे अनावश्यक रूप से महत्वाकांक्षी बनाते हैं। छोटी मोटी जॉब में फिर उसको संतोष नहीं है, उसे झाड़ू लगाने का काम बहुत छोटा मालूम पड़ेगा, ऑफिस में बैठने का काम उसे बहुत अच्छा मालूम पड़ेगा। जबकि उसे ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस में बाबूजी तभी बैठ पाएंगे जब झाड़ू निकालने वाला झाड़ू निकाल लेगा, वरना बैठ भी नहीं पाएंगे उस ऑफिस में। काम करना तो बहुत दूर, इतनी गंध आएगी, लेकिन वो उस काम को हमेशा छोटा मानेगा। ये जरा विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने और दूसरे के साथ में इस तरह उनके भीतर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो झाड़ू लगाने का काम करें, वरना आप ये समझें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो ऑफिसर बने लेकिन झाड़ू लगाने वाले को अपने से कम ना समझे, मैं ये कह रहा हूं। वह भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं अपनी जगह महत्वपूर्ण हूं, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। मशीन का बहुत बड़ा पुर्जा ही मशीन को संभालता हो, ये धोखे में न रहे मशीन, उसका एक छोटा सा पुर्जा भी उसके स्थान से अगर अलग कर दिया जाए तो पूरी मशीन ठप हो जाती। ऐसे ये पूरा विश्व है जिसमें कि एक एक यूनिट अपने आप में यूनिक है और उसका अपना इंपॉर्टेंस है। ये चीज उसके मन में आए, ये हम उसे सिखा सकते हैं। लेकिन हम उसे दूसरे से कंपेयर करते हैं और दूसरे से सुपीरियर है ऐसी फीलिंग बचपन से सिखाते हैं। बस यही जो है हम एक गलती कर देते हैं। हमें अपने आप में बहुत अच्छा बनना है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे से अच्छा बनना है यह बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा अच्छा नहीं है, तुम अच्छे हो, यह अच्छी बात नहीं है। दूसरा भी अच्छा है, तुम भी अच्छे हो। ये बचपन से चार मैकेनिज्म कल चलती हैं, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट आई एम आल्सो। बहुत रेयर केसेस में शुरुआत में तो यही होता है कि जब बच्चा देखता है कि मेरी आवश्यकताएं पूरी ना करके ये जो अभी नया नया जन्म लिया है इसने, दूसरे वाले जिसको कि मां कहती कि तेरा भाई है, कहती जरूर है, पर अब मेरी सुख सुविधाओं में कमी आ गई है इसकी वजह से, अब ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, यहां से शुरुआत होती है। और फिर वो मन ही मन क्या सोच लेता है कि मैं तो पहले जैसा था वैसा ही हूं, माता पिता ने मेरी तरफ ध्यान देना कम किया है तो ये गलत है, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। और या फिर दूसरा निर्णय ले लेता है वो, थोड़ा अगर कमजोर होगा तो यही निर्णय लेता है कि नहीं, माता पिता तो सही हैं, मेरे ही भीतर कोई कमी हो सकती है, तब तो माता पिता का प्यार मेरे प्रति कम हो गया है और मेरे से इस छोटे भाई के प्रति ज्यादा हो गया है। ऐसा मन में विचार लाके और क्या सोच लेता है कि आई एम रॉन्ग यू आर राइट। और तीसरी स्थिति तो बहुत ही खतरनाक होती है जिसमें वो ये सोच लेता है कि मैं तो गलत हूं ही, ये सब भी गलत है। और फिर बाद में पूरे जीवन जहां भी रहता है ऐसा व्यक्ति ऑफिस में रहेगा तब भी वो यही कहेगा कि मैं तो गलत हूं लेकिन तुम सब भी गलत हो। घर में भी रहेगा तो तब भी यही चीज उसके भीतर रहती है। जबकि सिखाना ये चाहिए कि बेटे तुम भी सही हो लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम समझदार हो गए हो, इस छोटे वाले को तो तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे हम लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी करना चाहिए, ये तुम्हारा भी दायित्व है, तुम समझो। तब उसके भीतर ये बात आएगी कि आई एम राइट, यू आर ऑल्सो, मैं तो सही हूं, तुम सब भी सही हो, तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, मैं भी सही। ये बहुत कम बच्चों में आता है, बड़े होने पर ये स्पष्ट दिखने लगता, बचपन में नहीं दिखता। देख लो आप, अपने आप को ठीक मानने वाले और सारी दुनिया को गलत मानने वाले लोगों की यहां पर कितनी बड़ी जमात है, देख लो आंख उठा करके एक बार। हां बहुत मिल जाएंगे लोग, अब भी अगर पान के ठेले पे खड़े होंगे तो पूरी गवर्नमेंट को ऊपर से नीचे तक जलील कर देंगे, अपने आप को ठीक मानेंगे, देख उसमें क्या देर क्या लगनी। हां पूरे ऊपर से नीचे तक अपने बाजू की नाली में गंदगी हमने फैलाई लेकिन अपेक्षा यह है कि राष्ट्रपति आवे और साफ करें, क्योंकि हमने उनको राष्ट्रपति, वाह भैया वाह, हम अपने नागरिक के दायित्व पूरे ना करें और हम उनसे अपेक्षा रखें कि वे अपने दायित्व पूरे करें, ये कौन सिखाता है? ये बचपन से हम सिखाते हैं, किसी की गलती नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। एक स्वस्थ परिवारजन, एक स्वस्थ सामाजिक प्राणी, एक स्वस्थ नागरिक बनाना आज नहीं रहा, आज तो सिर्फ दूसरे से अच्छे बनो, दूसरे से पीछे मत हटो। तुम अगर स्कूल में किसी की मार खाते हो तो उसे भी मार पीट करके लौटो, तुम उसमें भी कमजोर मत रहो, तुम उसे माफ करके लौटो। अरे नहीं नहीं, माफ करना नहीं सिखाएंगे, तुम मार पीट के लौटो, क्योंकि टिट फॉर टैट, मैंने वही जैसे कि गधा अगर लात मारे तो दोनों में कोई अंतर नहीं। वो जो पशु जगत में प्रक्रिया चलती वो हम मनुष्य जगत में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बेहतर कैसे बनेंगे? जरा विचार करने की चीज है, मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, अपन तो सिर्फ एक विचार कर रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा हमने कहीं कोई भूल तो नहीं की है, हम बचपन से कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। आज इतना ज्यादा एक दूसरे से और प्रतिस्पर्धा है, हम तो लगातार बच्चों में देखते हैं और हमें उनमें देख करके और उनकी गलती नहीं मालूम पड़ती, हमें लगता है कि इनको संस्कार देने वालों की कितनी बड़ी भूल की है इन्होंने कि इन्हें इस तरह की आदत क्यों सिखाई है, ये जीन छपट के हर चीज लेने की चेष्टा क्यों करते हैं, ये अपनी योग्यता के अनुसार कोई चीज हासिल करने के लिए अपनी योग्यता क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ये जब अयोग्य साबित हो जाते हैं तब ये पूरे के पूरे सिस्टम को दोषी क्यों ठहराते हैं, क्यों नहीं अपने आप को दोषी मान करके और अपने उन दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्हें संस्कार ही नहीं डाले गए, इन्हें तो ये कहा गया है कि अगर कम नंबर आए हैं तो तुम ये मान के चलो कि कापियां ठीक से नहीं जांची गई थी, तुम ये मान के चलो कि पूरा सिस्टम ही बिल्कुल करप्ट है। हां ऐसा ऐसा हम उनको, ये उनके भीतर हम इस तरह की चीज उन्हें सिखाते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि हम उन्हें सेल्फ एनालिसिस सिखाएं कि देखें हम अपने भीतर ही झांक करके कहीं अपनी ही तो गलती नहीं है। यह बात अलग है कि जहां हमारी हम सही हैं वहां पर वहां हम झुकेंगे नहीं, लेकिन जरा देख तो लें कि दूसरे को गलत साबित करने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही कहीं गलत हो, हम ही कहीं अयोग्य हो। यह प्रतिस्पर्धा इतने रूपों में हमारे जीवन को तहस नहस करने वाली चीज है, इस पर और भी आप विचार करना चाहें तो कर सकते हैं, पर हमारी अपनी वर्तमान की पीड़ा का कारण और जीवन को बेहतर ना बनने देने का कारण यही है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ प्रतिष्ठा, स्टेटस सिंबल में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। स्टेटस सिंबल में तो अब हाथ में सिगरेट भी शामिल है, स्टेटस सिंबल में तो किसी पार्टी में रात में सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल भी शामिल है, स्टेटस सिंबल में तो मंदिर के परिसर में भी बिसलरी से पानी पीना शामिल है,
स्टेटस सिंबल में तो मंदिर के परिसर में लिपस्टिक और नेल पेंट्स लगाना भी शामिल है, ये सब शामिल है, स्टेटस सिंबल है। इतनी सारी चीजें, क्योंकि मैं एक बड़े आदमी की बेटी या बेटा हूं या बहू हूं, तब फिर मैं उसी लकझक के साथ सबके बीच अपने को प्रस्तुत करूं। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं लगना चाहिए अच्छा, जो अच्छा नहीं है वो अच्छा क्यों लगना चाहिए? इसका मतलब है कि अभी भी अच्छाइयां हमारे जीवन में, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, अगर जिस दिन ये अच्छा लगने लगे तो समझना कि अब अच्छाइयां गायब होने को है। अभी तो बुरा करके भी हम फील करते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, अच्छा कुछ और है, इतना ही बहुत है अभी तो। ये सब हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया है सिर्फ काहे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। उस झूठी प्रतिष्ठा से क्या होने वाला? क्या बाहरी इस तामझाम से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, या कि हमारे भीतर की गुणवत्ता बढ़ने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है? मुझे बताइएगा, कहीं किसी से झूठा सम्मान पाने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, झूठे सम्मान पाने के लिए कोशिश करने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, या कि वास्तव में अपनी गुणवत्ता बना करके अपने जीवन को स्वयं सम्मान करने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है? स्वरूपे तिष्ठा, आचार्य भगवान तो ये कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही वास्तव में प्रतिष्ठा है। ये छोटे छोटे से पद हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसी में हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तब अगर हम कोई ऑफिसर हैं तब भी अपने उस ऑफिसर पने को नहीं छोड़ पाते हैं। फिर ये इतना हमारे जीवन में और बैठ जाता है, किसी से मिलते हैं तो एक कॉमन पर्सन की तरह नहीं मिल पाते हैं, हम मिलते भी हैं तो एक बहुत बड़ा आदमी हूं और आपसे मिल रहा हूं, ऐसे मिलते हैं। बताइए आप, वो हमें बड़ा माने इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं उससे बड़े की तरह पेश आऊं ये खतरनाक है। हां, और कुछ नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप इसका दूसरा अर्थ ले लें। बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, उसे बड़ा मानने का भ्रम भर नहीं होना चाहिए। कोई किसी को बहुत अच्छा मानेंगे, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं तो अपने आप को अभी पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ हूं, ये मान करके अपने भीतर की और अच्छाइयों को प्रकट करूं, अपने जीवन की और जो बुराइयां हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्न करूं, मैं अपने को पूर्ण मान करके या बहुत बड़ा मान के बैठ जाऊं तो मेरे बड़े और अच्छे होने के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा हूं। पद और प्रतिष्ठा पाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आज के समय में बहुत आसानी से मिल रही है, बहुत आसानी से मिल रही है, जैसे कि रेवड़ी बांटी जाती ऐसी मिल रही है। हाँ, आप खुली आंख से देखना तो आपको मालूम पड़ेगा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, और एक मिनट में वो पद प्रतिष्ठा नीचे आते भी देखने में आ रही है। बर्फ के पहाड़ पर खड़े होने वाला ध्यान रखे कि उसी की गर्मी से बर्फ पिघल जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, ये हमेशा देखने में आता है। भले ही वो पहाड़ के ऊंचे खड़ा हुआ और लोगों से अपने को बहुत बड़ा मान रहा है, लेकिन खड़ा कहां हुआ है? बर्फ के पहाड़ पर। और काहे से पिघलती है? अपने ही अहंकार की गर्मी से पिघलती है बर्फ। जब जब हमें अपने बड़े होने का अहंकार आ जाता है तब तब, अपने बहुत सफल होने का अहंकार आ जाता है तब तब। बड़े होना और सफल होना बुरा नहीं है, लेकिन बड़े होने और सफल होने का अहंकार आना बहुत बड़ी बुरी चीज है। प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ये कहने में भी अच्छा नहीं लगता। अपन लोग प्रतिष्ठा के चलते, अब चूंकि मैं उनने बुलाया है, उनके ब्याह में जा रहा हूं और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो अब जब वो कहेंगे कि रात में खा लो तो खाना ही पड़ेगा। अब ऐसे कैसे? हां, प्रतिष्ठा का सवाल है, नहीं तो वो कहेंगे कितने बैकवर्ड हो तुम। हां, ऐसा नहीं कहेंगे वो, तो कितना बेकार लगेगा चार लोगों के बीच में कि इतने बड़े आदमी होकर के भी, इतने पढ़े लिखे होकर के भी, और क्या दकियानूसी बातों में लगे हो। 15वीं शताब्दी में जब बिजली नहीं होती थी तब की बात हो सकती कि अंधेरे में मत खाओ, अब तो बिजली की जगह मगर लाइट है, उसमें खाओ और भूल जाओ, अत्यंत अवैज्ञानिक हो जाओ। हाँ, ये कहेंगे अपन, ये याद नहीं आता कि हम अवैज्ञानिक हो गए। अपने को बहुत वैज्ञानिक मानते हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोग भी भूल जाते हैं उस समय रात में खाते समय कि अल्ट्रावायलेट रेज की एब्सेंस में कितने जर्म्स क्रिएट होते हैं, कितने माइक्रोब्स जो है पूरे एनवायरमेंट में, और कितना पोल्यूशन हो जाता है, ये भूल जाते हैं। और अत्यंत अवैज्ञानिक होकर के और उस प्रक्रिया में शामिल हो जाते, किस वजह से? स्टेटस। बहुत सारी चीजें, मैं जब भी इस पर विचार करता हूं तो मन थोड़ा मैंने अच्छा नहीं लगता, दुखी हो जाता मन की क्या कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी भी जिसके पास इतनी सामर्थ है कि वो चाहे तो सादगी और सरलता क्या होती ये दिखा सकती है, लेकिन वो ये दिखा रही कि वल्गरिटी और अय्याशी क्या होती है। हां, वो ये दिखा रही है कि देख लो क्या 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 होती, अय्याशी क्या होती और वल्गरिटी क्या होती, ये मैं दिखा सकता हूं तुम्हें, मेरे अंदर क्षमता है। जबकि वो चाहती अगर युवा पीढ़ी तो क्या होती सरलता और क्या होती है सादगी और क्या होता है ज्ञान, इस बात को दिखा सकती थी, इस बात के लिए प्रतिष्ठा पा सकती थी। आज तो वो इस बात के लिए प्रतिष्ठा पा रही है। देखिए, ऐसा अगर अपन सोचते हैं तो कैसा लगने लगता, मन खराब होने लगता ना। हमारे अपने प्रतिष्ठा को हम धीरे धीरे करके, जो वास्तविक प्रतिष्ठा है उसको भूल करके ऐसी झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए, वास्तविक प्रतिष्ठा पाने का इनकार नहीं कर रहा हूं, वास्तविक प्रतिष्ठा तो अपने नैतिक जीवन मूल्यों को अपने जीवन में लाना ही वास्तविक प्रतिष्ठा है, लेकिन अपने नैतिक जीवन मूल्यों को भुला देने में कोई प्रतिष्ठा नहीं है जिसके पीछे आज हम दौड़ रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। मैंने आपको कोई उदाहरण ही नहीं दिया, इतनी देर से आपको बहुत हैवी डोज दे रहा हूं, जरा सा लाइट कर लेते हैं अपन, जरा हंस लेते हैं अपने ऊपर, दूसरे पर नहीं है। तैयार आप? कोई तैयार नहीं होता अपने ऊपर हंसने के लिए। अच्छा बताओ, केले के छिलके पे फिसल करके गिरते हैं तो हंसते हैं, दूसरा गिरे तो हंसते तो हैं, अपन खुद गिरे तो तब कहां हंसते हैं कि देखा मैं इतना होशियार, इतना पढ़ा लिखा और ये भी नहीं दिखा और मैं फिसल गया, अब हंसूं अपने आप पर? नहीं, दूसरा हंसता है। ये अपन ने दूसरे के जिम्मे कर रखा है कि तुम हंसना, जब तुम गिरोगे तो हम हंसेंगे और हम गिरे तो तुम हंसना। यही तो नहीं, थोड़ा सा चेंज करना। क्या हुआ, एक अम्मा जी का उदाहरण देता हूं मैं, हमेशा वही आपको दे दे रहा हूं। कोई अम्मा जी होंगी तो बुरा तो नहीं मानेंगी, वैसी वाली अम्मा जी यहां थोड़ी है, वो तो कहानी वाली अम्मा जी है। क्या हुआ कि अम्मा जी को ने एक बार वो पान रखने का, जो लखनवी स्टाइल का, और वो मचला होता ना पान रखने का, मचला कहते उसको, जो भी अच्छी बढ़िया बनती है वो, हाँ कैसे कैसे उसको बनाते हैं, बहुत सुंदर सी उस पर कारीगरी होती है, तो वो उनने खरीदा पानदान कह लो। अब लेकिन पानदान कहने से वो स्टील वाला ध्यान में आ जाता पानदान, इसलिए नहीं कहा हमने पानदान। वो मचला जो है वो बड़ा अलग ही चीज है, वो उसमें तो बहुत कारीगरी रहती है और बिल्कुल वो जो बगल बंडी होती उसके अंदर रखा जाता, वो अब नहीं रख सकते। वैसा होता है, लखनवी नवाब जो होते हैं वो, उनकी स्टाइल यही होती है। उनने वो खरीदा, अब लेकिन खरीद तो लिया लेकिन अब कोई देखने वाला नहीं, अब देखने वाला नहीं तो खरीदना बहुत कठिन है। अपने पास में जितनी चीजें हैं उन सबसे अपन अपने को बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, इसके पीछे एक जुड़ी हुई क्या चीज है? उनके प्रदर्शन करके हम अपने को प्रतिष्ठित मानते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई उनके प्रदर्शन से और खुश ना हो तो वे चीजें हमारी प्रतिष्ठा का कारण नहीं बनेगी, वो हमारा स्टेटस सिंबल नहीं बन पाएंगी। अगर कोई उन सबको महत्व देना बंद कर देवे, देख लो आप, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जैसे ही हम वे चीजें दिखाते हैं और वो बहुत खुश होता है तो हमारा कद बढ़ जाता है, हम अपने को थोड़ा बड़ा महसूस करने लगते हैं कि देखा अब आएगा मजा, ये मेरे पास है और इसके पास नहीं है। मजा तभी तक आता है चीजों का, हां, जब तक कि मेरे पास है और दूसरे के पास नहीं है। प्रदर्शन के मायने ही ये है कि आओ देखो ये चीज मेरे काम में आती है, नहीं मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। मेरे काम में आती हैं चीजें, उनको मुझे प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे प्रदर्शन करने वाली चीजों का तो मैं उपयोग ही नहीं करता, अगर वास्तव में देखा जाए तो ठीक से उपयोग ही नहीं कर पाता जिन चीजों को मुझे दूसरे को दिखाने की प्रवृत्ति होती। अब वो अम्मा जी बड़े मुश्किल में, कई बार वो लोगों के यहां बिना बुलाए गई और उनके सामने ही वो मछला निकाल के उसमें से कई बार पान खाया, ऐसी कोशिश में कई बार व्यर्थ ही पान खाना पड़ा। करना पड़ता है ऐसा, बहुत बार करना पड़ता, नहीं जरूरत है तब भी करना पड़ता अपने को। अब कोई अपनी गाड़ी नहीं देखे तो दो चार चक्कर लगाना पड़ते। हम तो अभी वहां लक्ष्मी नगर गए तो वहां हमने देखा, अब तो हमने बाद में कहा कि नई नई खरीदी होगी, अब आहार के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर उसी के बीच में से और चार दफे उसको ऐसे चक्कर ऐसे कट करके ताकि ध्यान चला जाए कि हमने नई खरीदी और हम तीन लोग बैठे। ये प्रवृत्ति कहां से आई? मैं तो ये सोचता हूं उनकी गलती नहीं मानता हूं, इस प्रवृत्ति को हमने और आपने उनके भीतर डाला है, वे उसी में अपना सम्मान अपनी प्रतिष्ठा महसूस कर रहे हैं, वरना कोई क्यों करता है इस चीज को? जब कोई किसी तरह से प्रसिद्ध नहीं हो पाता तो वो प्रसिद्धि के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढता है, अयोग्यता भी प्रसिद्धि का कारण बन जाती है। योग्यता तो प्रसिद्धि का कारण बनती ही, अयोग्यता भी प्रसिद्धि का कारण बनने लगती ऐसी स्थिति में, और आज यही हुआ है। अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी अपनी चालबाजियों से प्रसिद्धि हासिल करता है, देख लो आप, पीठ हम उन्हीं की थपथपा रहे हैं जो अयोग्य हैं, पर उन्होंने किसी ना किसी जुगत बिठा करके और कोई ऐसी चीज हासिल कर ली है। हम व्यसनी व्यक्ति के भी पैर छू लेते हैं अगर उसके पास में कोई विभाग हो, अगर तो उससे हमारा काम निकलता हो तो, हाँ, तब फिर वो व्यक्ति क्या सोचता है कि बढ़िया है, चाहे जैसे रहो इस जगह पहुंच जाओ बस, तो अपनी खूब जय जयकार होगी। हमने उसको वहां पहुंचा करके अपराध किया है, वो हमें खुद नहीं दिखता, ये कह रहा हूं आपसे। छोड़ो, कौन पड़े इतने बड़े झगड़े में, कहानी अच्छी थी वो, बेकार में अपन बीच में इतनी बातें करने लगे, है कि नहीं? कैसा लग रहा है? ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहानी अच्छी है, तो वो क्या हुआ उसमें कहानी में कि उसने तीन चार दफे खाना पड़ा, उसको पान नहीं भी खाती थी तो खाना पड़ा, बजट भी गड़बड़ा गया, अपना भी गड़बड़ा जाता है ऐसी चीजें करने में, बजट बहुत गड़बड़ा जाता है दिखावटी चीजें करने में प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन कोई ने ध्यान नहीं दिया। और एक दिन तो जब उससे सहन नहीं हुआ कि मैंने नया मछला इतना बढ़िया खरीदा और कोई ने ये तक नहीं पूछा कि कब खरीदा, बताओ आप कितनी मुश्किल वाला काम है, तो कहते हैं कि हल्ला मचा मोहल्ले में कि बुढ़िया मां के यहां पर आग लग गई, चलो पानी लेकर के चलो, सब बाल्टियों में और जगह जगह जैसे भी जिनसे बना पानी लेके भागे। कहां लग गई बूढ़ी अम्मा? आ गई तो देखा कि कुछ कागज वागज पड़े हैं, कचरा पड़ा, उसमें आग लग गई है, सबने आंगन फांगन और आग बुझाना शुरू किया, लेकिन बूढ़ी अम्मा तो मजे से और सबके बीच खड़ी हुई अपना मछला निकाल करके एक पान खा रही है। और जैसे ही वो पान खा रही है, उनने देखा किसी बाजू वाले ने, और मछला देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, भूल गया क्योंकि आग बहुत लोग बुझा रहे हैं, बुझ जाएगी वो तो, हाँ, तो पूछ ही लिया बूढ़ी अम्मा से कि अम्मा जी ये कब खरीदा मछला, इतना सुंदर सा आपके पास पान रखने का मछला। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि पहले कैदई होती तो जा आगी काय को लगती। अगर यही बात पहले पूछ ली होती तो काय को, वो तो हमें को लगाना पड़ी, जब भीतर बहुत लग गई तो बाहर भी लगाना पड़ी। ये हो रहा है, इस पे अपन हंसते हैं, पर अपने जीवन में भी यही कर रहे हैं अपन, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसा जो पद प्रतिष्ठा पाने का लालच या दूसरे को अयोग्य होने पर भी अपने योग्यता का प्रदर्शन करने का लालच, ये सब हमारे जीवन को दुखी बनाने वाली चीजें भैया। ये तो अपन ने अपने दुख के उपाय किसी और ने नहीं किए हैं, अपन ने ही किए हैं अपने उस भोगवादी दृष्टिकोण की वजह से। वापस लौट के आए, कहां से ये शुरू हुआ था, मेरे जीवन को मैं भोग विलास की सामग्री जोड़कर बेहतर बनाना चाहता हूं। अगर ये मेरे जीवन को बेहतर बनाने का ढंग है तो ये मेरे जीवन को दुख उत्पन्न करने वाला ही है, क्योंकि उसी से ये सारी चीजें मेरे जीवन में आती हैं। मुझे करना क्या चाहिए, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और प्रीति का व्यवहार करना चाहिए। कहां पड़ा हूं मैं प्रतिस्पर्धा प्रतिष्ठा और प्रदर्शन में, मेरे भीतर तो अपने ही समान सब हैं, इस तरह का प्रेम और प्रीति का भाव उत्पन्न होना चाहिए। हम तो वे लोग हैं जिन्होंने परमात्मा से भी प्रेम करना सीखा है, प्राणी मात्र से प्रेम और उसके भीतर बैठी हुई परमात्मा शक्ति से प्रेम करने का हमारा दायित्व है, हमारी संस्कृति है। वो हमारे अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाली चीज है, जो अब धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही, गायब हो रही ऐसा नहीं कहूंगा, हाँ पहले जरूर कहता था, अब तो कहूंगा परिवर्तित होती चली जा रही। प्रेम प्रीति है, आज भी है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। भगवान से प्रेम इतना ही है कि भगवान हमारे काम बना उतरेवे, हाँ जिस दिन हमारा काम नहीं बनेगा भगवान से, सो भगवान को हमेशा के लिए जय जिनेन्द्र रव, अपने मजे में मंदिर में, हमें आपके पास आने की फुर्सत नहीं है। काम बन जाएगा तब भी नहीं है, और काम नहीं बनेगा तब भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। पूजा पाठ तभी तक करते हैं जब तक कि काम नहीं बना, और जब पता लगा कि काम बन गया तो अब जरा कम हो गया क्योंकि काम में उलझ गए, काम बन गया तो तब भी प्रेम प्रीति कम हो जाती, भगवान के प्रति भी श्रद्धा कम हो जाती, और काम नहीं बने तब तो हो ही जाती है, क्योंकि इतनी पूजा पाठ करी, 20 वर्ष हो गए, माथा टेका और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो दूसरे जगह चलो। घर के संबंधों में भी यही चीज है, जितने भी आज प्रेम प्रीति के संबंध हमने बनाए थे उन सब के भीतर भी यही स्वार्थ प्रवेश कर गया है, इसलिए उसका रूप बदल गया है। हमें क्या करना है, उसके रूप को बदल देना, फिर से जो बदल लिया है हमने उसको ठीक कर लेना चाहिए, और कुछ नहीं करना। प्रेम प्रीति तो हमारी है, उसमें से स्वार्थ भर गायब कर दें हम, फिर देखिएगा कितना आनंद आता है। चीजें हमारे पास रहें बहुत अच्छा है, हम उनका प्रदर्शन ना करें, हम उनका उपयोग करें, दूसरे के उपयोग में आए हम उनको दें। हम कोई पद प्रतिष्ठा पाएं बहुत अच्छी चीज है, क्यों ना पाएं हम, लेकिन हम उसके द्वारा दूसरे की मदद करें और दूसरे को भी उसी ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रयत्न करें कि तुम भी वहीं आओ, मैं अकेला क्यों, उतनी ऊंचाई पर आप भी आओ, तो आप भी उस पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ, जैसे कि मैंने योग्यता बढ़ा करके इस चीज को प्राप्त किया है। ये सोच हमारा थोड़ा सा बदल जाए तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी हमारे जीवन को ये दुख दे रही है, फिर ये इन्हीं चीजों में से हम चाहेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति मिलने लगेगी। प्रेम और प्रीति, निस्वार्थ प्रेम और प्रीति हमारे जीवन में आ सकती है, ऐसा नहीं है, आज भी है पर थोड़ी मात्रा में बची हुई है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है, मैं आपको वही सुना देता हूं। भगवान के प्रति भी निस्वार्थ प्रेम हो सकता है, अपने पड़ोसी के प्रति भी हो सकता है, अपने नौकर चाकर के प्रति भी हो सकता है, अपने घर परिवार के लोगों के प्रति तो होता ही है, इन सब के प्रति भी हो सकता है क्या निस्वार्थ प्रेम। और वो अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर देखिएगा कि कितना बेहतर जीवन होता है हमारा। कभी करके देख लीजिएगा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो तो खुद ही प्रयोग करके देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक छोटी सी घटना यशपाल जी के जीवन की सुनाऊं, फिर बाद में ओ हेनरी ने जो लास्ट लीफ शायद मैं सुना चुका हूं क्या, ओ हेनरी नहीं सुना है, दोनों चीजें आज मेरा मन है कि सुना दूं, थोड़ी देर तो हो जाएगी, अब क्या कर सकते हैं, इतवार है अब तो होगी तो देर तो होगी। यशपाल जी विदेश यात्रा के लिए गए, उनने अपने जीवन का संस्मरण लिखा है, और वर्लिन घूमने गए जब वो, तो उन दिनों वर्लिन में आपस में कोई तकरार हो गई थी तो एक दीवार बना दी गई थी, ऐसा अब नहीं है वो, पर सबको ये मालूम था कि वर्लिन के लोग आपस में झगड़े और उनके बीच में एक दीवार उठानी पड़ी और उनका विभाजन हो गया। हमारे देश में ये नहीं, हमारे देश में करप्शन है, हमारे देश में यों है त्यों है, जबकि हम उसी के नागरिक हैं, उसी की नागरिकता का हमारे पास अधिकार है और उसी की हम निंदा कर रहे हैं, हम उसकी शाख किस में है उसको अपने हाथ से तोड़ रहे हैं और फिर उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी इज्जत जिसमें है वो हमने स्वयं दांव पे लगा रखी अपने देश की और उसकी फिर हम निंदा कर रहे हैं। इसमें हो सकता है कि वैसा ही देखने में आए, लेकिन आप संभल के सुनिएगा, वे वहां उन दोनों के एड्रेस लेके जाते हैं और उनसे हॉस्टल में मिलते हैं, और जब पहले वाले के रूम पर पहुंचते हैं और उससे अपनी समस्या बताते हैं तो वो क्या कहता है कि इन दिनों मेरे परीक्षाएं चल रही हैं और मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं वर्लिन घुमा तो सकता था आपको लेकिन मुझे वक्त नहीं है। ऐसा जवाब देता है भारतीय होने के बावजूद भी एक भारतीय को मदद करने से इनकार कर देता है, जबकि मेरे पास एक भारतीय व्यक्ति का ही जो विदेश में है उसका पत्र है, उसमें लिखा है कि महाराज यहां आने के बाद मुझे संबंधों की गरिमा समझ में आने लगी है, वहां तो अपने सगे भाई के साथ भी सगे भाई जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं भारत में, यहां तो अगर कोई ये कह दे कि मैं भारत का हूं तो अपने सगे भाई से कम नहीं मालूम पड़ता, और अगर वो ये कह दे कि मध्य प्रदेश का हूं तब तो बिल्कुल एक ही मां का जाया हुआ ऐसा लगने लगता है, और भारत में तो एक ही मां के जाए हुए दो संतानें भी एक दूसरे के साथ उतना प्रेम नहीं रख पाते जितना यहां उमड़ता है उसको देख करके, कि चलो कोई तो है हमारा अपना हमारे देश का, और वे अपने ही देश के व्यक्ति से कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अभी हमारी परीक्षाएं, जबकि ये ध्यान रखना उनकी परीक्षाएं नहीं चल रही हैं, ये सबसे बड़ी चीज जो यशपाल जी ने लिखी कि मुझे मालूम पड़ा कि उनकी परीक्षाएं नहीं चल रही, उन्होंने सिर्फ बहाना बनाया है मेरे से, ये सोच करके कि दूसरा मदद करेगा। दूसरे ने मालूम क्या जवाब दिया, इन दिनों मैं बहुत अस्वस्थ हूं, मेरे सिर में और पेट में बहुत तकलीफ रहती है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, जबकि वो स्वस्थ था, उसने ये बहाना बनाया, और दोनों से निराश होकर के बहुत बोझिल कदमों से वे नीचे उतरते हैं, और उस कैंपस का दरवाजा पार करते समय उनके चेहरे पर बहुत उदासी देख करके वहीं वर्लिन का एक नवयुवक उनसे पूछता है कि लगता है आप हमारे देश में अतिथि हैं और आप किसी निराशा में हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? सोचिएगा, वही प्रवृत्ति हमारी भी होनी चाहिए थी, हम अपने देश से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने परिवारजनों से, यहां तक कि प्राणी मात्र से प्रेम रखने वाली संस्कृति वाले लोग हैं, और क्या हुआ, ये उदाहरण दूसरे के पास चला गया है। हमारा तो स्वाभिमान बहुत जल्दी गड़बड़ाने लगता है, अभी जैसे गड़बड़ा गया था, जरामी गड़बड़ा गया था हमारा स्वाभिमान, हमने अपने स्वाभिमान को कई बार दांव पे लगाया लेकिन जरा सी चीज में हमारा स्वाभिमान टकराने लगा, और ये हमारे स्वाभिमान की बात है, अभी अभी सबको मालूम है, मेरे मुंह से काय को कहलवा रहे हैं, हाँ सबको मालूम है, बड़े जल्दी, और क्या क्या नहीं किया है, अपने स्वाभिमान को कैसे कैसे दांव पे नहीं लगाया है वो भूल गए। ये है हमारी अपने देश के प्रति स्वाभिमान, देश से प्रेम, और दूसरा आकर के और भारतीय संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सोचो आप, और हम अपनी भारतीय संस्कृति को विदेश में रह करके भी कायम नहीं रख पाते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और वो वर्लिन का नवयुवक कह रहा है कि आप निराश क्यों हैं मेरे इस देश में आकर, आप हमारे अतिथि हैं, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो वो जब उन्हें अपनी समस्या बताते हैं तो अत्यंत व्यस्त होने के बाद भी वो नवयुवक कहता है कि 3 दिन लगेंगे मेरा प्यारा वर्लिन घूमने के लिए, मैं आपके साथ, आप बता दीजिएगा कि किस किस समय आप जानना चाहेंगे, मैं उस समय उपस्थित हो जाऊंगा। और यशपाल जी ने लिखा कि मैंने जो टाइमिंग्स बताई थी कि मैं इतने इतने समय पर फ्री हूं और इतने समय तुम्हारे साथ मैं वर्लिन घूमने जा सकता हूं, वो ठीक उस टाइमिंग पर और उनके पास उपस्थित होता था। और 3 दिन तक उसने अपना पूरा देश घुमाया, और जब वो दीवाल के पास पहुंचा तब उसने मालूम क्या कहा कि अपने भारत जाकर के आप ये मत कहिए क्या कि वहां के लोग ने झगड़ करके दीवाल बना ली है, अब हम लोगों का प्रेम फिर से कायम हो गया है, ये दीवाल जल्दी हट जाएगी, आप अपने भारत जाकर के हमारे देश के बारे में ये मत कहिए, हम उसे ठीक कर लेंगे जल्दी। और इतना ही नहीं, वे लिखते हैं कि जब विदा देने लगे हम उसे या उससे विदा लेने लगे, तब यशपाल ने हाथ जोड़ करके जब उसे धन्यवाद देना चाहा कि तुमने अपना कीमती समय मुझे अपना प्यारा देश दिखाने के लिए दिया, तो मालूम उसने पैर छू करके ये कहा कि आपने मुझे इस योग्य समझा, आपने मुझे 3 दिन तक इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद आपको देता हूं, आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। यह है हमारी अपनी संस्कृति, जहां की हम निस्वार्थ दूसरे की मदद करते हैं प्रेमवश। और वो जो उदाहरण मैंने आपसे कहा था वो हेनरी का, वो भी आज मेरा सुनाने का मन है, ये तो बीच में याद आ गया मुझे, इसलिए रहा नहीं गया। अच्छी बातें मुझे तो अच्छी लगती हैं, मैं इसी तरह की बातें पसंद करता हूँ और ऐसी बातें ढूंढता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। बाकी दुनिया में क्या हो रहा वो भी जानता हूँ, पर उससे सिर्फ दुखी हो लेता हूँ। सुधार तो सकते नहीं, अपन अपने को ही नहीं सुधार सकते तो दूसरे को क्या सुधारिएगा। अपने को ही जितना सुधार सकें उतनी ही सुधार सकते हैं, हर व्यक्ति अपने लिए सुधार सकता है, दूसरा उसे सिर्फ दिशा दे सकता है। सुधारना नहीं सुधारना तो उसके अपने हाथ में है। ऐसी ऐसी चीज़ें आज के समय में सुनने में आती हैं जिनको सुन करके मन बहुत कैसा लगने लगता है, कुछ कहा नहीं जाता, बस लगता है कि ये सब भी देखने के लिए हमें जीवित रहना था शायद, यहाँ इस देश में अपनी आँख के नीचे ही क्या क्या चीज़ें घटित होती चली जाती हैं हमारे अपने समाज के बीच में, और कितनी विकृतियां प्रवेश ले चुकी हैं, ये देख करके कैसा दिल करता है, कहाँ चला गया वो सब हमारा अपना नैतिक जीवन, मूल्य के प्रति सम्मान, कहाँ चला गया हमारा वो प्राणी मात्र के प्रति प्यार, कहाँ चली गई हमारी वो आस्था और श्रद्धा पूज्य पुरुषों के प्रति, वो सब धीरे धीरे करके कैसा रूप लेती चली जा रही है, कैसे परिवर्तित होती चली जा रही है। पर ठीक है, अपन तो अच्छी बातों को फिर भी बनाए रखेंगे जितना अपने जीवन में हो सकेगा। ओ हेनरी फॉरेन राइटर हैं, उन्होंने एक कहानी लिखी है द लास्ट लीफ, द मास्टरपीस, दोनों तरह से छपी है वो, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है, बहुत बड़ा पेंटर है वो, बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया उसने आर्ट बनाए हैं। उससे जब लोग पूछा करते हैं कि अब आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अपना ये आर्ट या अपना जो आपने कला सीखी है उसको किसी को दे के जाइएगा और अपने जीवन में कोई ऐसी कृति बनाई के जाइएगा जिससे कि अमर हो जाए वो, वो कहता है कि बनाऊंगा बनाऊंगा, मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा और किसी ना किसी को अपनी ये कला दे करके जाऊंगा। और उसने फिर अपनी कला सिखाने के लिए एक पूरा अपने घर में इंस्टीट्यूट खोल लिया, बहुत सारे लोग उसके यहाँ पर उसकी कला सीखने वहीं रहने लगे हैं, उसमें से एक बेटी भी है 20-22 बरस की है, बहुत अच्छा उसका हैंड है, वो बहुत प्रिय शिष्य है उस कलाकार की, उस 82 साल के कलाकार की, वो उसे बेटी की तरह अपनी सारी कला सिखाता है। लेकिन क्या करें, कलाकार का दुर्भाग्य कह लें, कि अचानक ही एक दिन वो इतनी संवेदनशील है, वो कलाकार जो कि अपने खिड़की में खड़े हुए एक दिन सामने वृक्ष को देखती है और उसके भीतर एक विचार आता है कि इस वृक्ष में से जितनी पत्तियां गिरती हैं मेरा जीवन उतना ही कम होता चला जाता है। एक निराशाजनक विचार उसके भीतर पता नहीं कैसे बैठ जाता है और रोज रोज खिड़की पे खड़ी होकर के देखती है, आज इतनी पत्तियां गिर गईं, मेरा जीवन भी इतना ही नष्ट हो गया। यह चीज कई लोग उसे समझाते हैं, वो बूढ़ा कलाकार भी मन ही मन रोता है कि एक को तो मैंने सोचा था कि मेरे बाद मेरी कला संभालेगा, लेकिन ये भी जीवन से निराश हो गया। रोज पत्तियां तो गिरती हैं, हवा चलती है, नई उगती पत्तियां उसे दिखाई नहीं पड़ती, वो जो गिरती पत्तियां हैं वो दिखाई पड़ती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि पत्तियां बहुत थोड़ी रह जाती हैं, अब तो वो डेथ बेड पर जैसे लेट गई है, सारा कुछ निराशा से घिर गया है, जितने भी और कलाकार हैं वे भी उसके चारों तरफ उसे समझाने के लिए जुटे हैं। अब उस इंस्टीट्यूट में कोई कलाकृतियां नहीं बना रहा है, सब उसे संभालने में लगे हुए हैं, कलाकार भी चिंतित है। वो बूढ़ा वो बिल्कुल निराश होने से खाना पीना भी छोड़ चुकी है और मरणासन्न ही अवस्था को प्राप्त है, जीवन कितना रहेगा कहा नहीं जा सकता। पर्दे डलवा दिए गए हैं खिड़की पर, लेकिन वो जिद करती है कि पर्दा हटा करके मुझे दिखाओ अब कितनी पत्तियां उस वृक्ष पर रह गई हैं। रोज वो एक बार उन पत्तियों को गिनती है, अब थोड़ी और बची हैं, थोड़ी और बची हैं, ऐसे ही मेरी सांसें भी थोड़ी और बची हैं। क्या करे, वो कलाकार सोच में है। एक दिन तो ऐसा होता है कि सब देखते हैं खिड़की में से उस वृक्ष पर सिर्फ एक ही पत्ती बची हुई है और वो बहुत निराश है कि बस ये एक पत्ती टूटने में कितना, एक दिन दो दिन लगेंगे। और इतना ही नहीं, उस दिन ऐसी घटना घटती है कि बहुत तेज तेज बारिश आती है, आंधी चलती है, सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी बाहर चलने वाली आंधी और बारिश की आवाज तो उसके कानों में पड़ती है। तब वो सबसे कहती है कि इतनी आंधी बारिश में तो वो जो एक पत्ती और थी, आखिरी पत्ती, वो तो अब आज रात गिर ही जाएगी, मेरा जीवन भी आज रात इतना ही शेष बचा है, कल की सुबह का सूरज उगता शायद मैं नहीं देख पाऊंगी। इतनी निराश होकर के वो पड़ी हुई है, सब उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो 82 साल का बूढ़ा कलाकार अचानक रात 12 बजे उसे लगता है कि अब समय आ गया है, मुझे कोई आखिरी कलाकृति बना लेना चाहिए। और वो अपनी सीढ़ी और लालटेन लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और सारी रात वो कलाकृति बनाता है। सुबह उसके जीवन में नहीं होती है, वो तो अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर लालटेन और सीढ़ियां हाथ में उसके बाजू में दबी हुई हैं और पड़ा हुआ है। लेकिन जब सुबह सुबह वह बेटी, वो कलाकार पूछती है कि बस एक बार मुझे ये पर्दा खोल के दिखा दो कि वो पत्ती अब तो गिर गई होगी इतनी आधी पानी तूफान में, और लोग भी बहुत मुश्किल में हैं कि क्या करें, अब कैसे दिखाएं। सूरज की पहली किरण के साथ ही वे पर्दा हटा करके उसे उठा करके खिड़की के पास दिखाते हैं और खुद भी सोचते हैं कि नहीं देखेगी पत्ती, लेकिन वे चकित रह जाते हैं कि उस पेड़ पर वो पत्ती अभी भी ज्यों की त्यों लगी हुई है। अब इसके जीवन में जीवन का संचार होना शुरू होता है। अरे अद्भुत, सारी पत्तियां गिर गईं, गिर जावे आंधी पानी तूफान में, ये एक पत्ती सारी रात नहीं गिरी, इसका मतलब है कि मैं भी नहीं मरूंगी। बस वीटल पावर, जीवनी शक्ति उसके भीतर, और वो स्वस्थ और प्रसन्न हो गई और अपनी स्वस्थता और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उसने कहा कि मैं अब भी जाती हूं अपने उस बूढ़े पिता से मिलने के लिए कि मैं अब जीऊंगी और तुम्हारी कलाकृतियों को मैं उनका नाम रोशन करूंगी। और जब सब उसे लेकर के उस पूरे कलाकार को खोजने जाते हैं तो वो अपनी ही सीढ़ियों पर लालटेन लिए और प्राणांत हो गया है, पड़ा हुआ मिलता है। हुआ क्या? अब सब खोजते हैं कि हुआ क्या, ये सब घटित कैसे हुआ। तब मालूम पड़ता है कि उस बुरे कलाकार ने आंधी पानी तूफान में किया क्या था। उसने सिर्फ ये किया था कि उस पेड़ के पास ही एक दीवार थी घर की, उस दीवार पर इस तरह से सारी रात में एक पत्ती ऐसी बनाई थी जो कि उस खिड़की से देखने पर ऐसी मालूम पड़ेगी कि वृक्ष पर टंगी हुई है। और उस पत्ती को सारी रात बनाने में ही उसका जीवन पूर्ण हो गया, आंधी पानी तूफान में उसके प्राणांत हो गए, लेकिन उसका प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। निस्वार्थ प्रेम, अपना जीवन देकर के भी दूसरे के प्राणों की रक्षा उसने की, इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता। आज है ऐसा, जीवन को ऊंचा उठाने वाला शायद यही भाव है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, वो जीवन को ऊंचा उठाता है। काश ये घटना हमें भी प्रेरणा दे और किसी को जीवन में हम उदास होते देखें तो उसके भीतर जीने का उत्साह भरें और अपने जीवन को ऐसे जिएं जिससे कि कोई अपने जीवन से निराश ना हो, अपने आसपास के वातावरण में निराशा ना भरें, अपने आसपास के वातावरण में जीवन भर सकें। अगर इस तरह की हम सेवा कर सकें, इस तरह का सद्भाव हमारे जीवन में हो, तो फिर हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बना सकें, आज अपन एक साथ मिल बैठकर नमोकार करते हैं। ओ नमो अरिहंताय, नमो अरिहंताय, ओम नमो सिद्धाय।